మంగళం భగవానికి మంగళం గోతము అని మంగళం పొందుకుంటూ మంగళం సర్వమంగళ మంగళం సర్వ కళ్యాణకారికం ప్రధానం సర్వమానం ఆచార్య గురుకుల ద్వారా వచ్చి గ్రంథాది అనుసార భరత్ క్షేత్రకి సర్వశ్రేష్ఠ ఆచార్య గురుకుల ద్వారా లిఖా గ్రంథ सर्वश्रेष्ठ रचनाकार और उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना वो आचार्य कुल्लूकुल में स्वामी और समय काल ग्रंथ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समय काल वो महान ग्रंथ है जिस महान ग्रंथ को पढ़कर पिछले 2000 वर्षों में सैकड़ों लोगों का जीवन बदल गया है, जिसके हाथ में पड़ गया, जिसने समयकार का मर्म समझ लिया, जिसने समयकार को जान लिया, समय तो वो निहाल हो गया। गुरुदेव के हाथ में आया तो गुरुदेव ने कहा आचार्य जी भगवान महाशास्त्र सत्र ऐसा शास्त्र है, जिस शास्त्र को पढ़कर आचार्य भी हो जाए, ये ऐसा शास्त्र है समयकार। गुरुदेव का जीवन बदला, श्रीमद जी को बहुत प्रभावित किया समय काल ने, जैसे जी चावड़ा और ऊपर चलो तो चोरेमल जी, बनारसी दास जी, पांडे राजमल जी, अरे अनगिनती लोग जिनका जीवन एक समय काल से बदला है, आखिर क्या है ये समय काल, ऐसी क्या चर्चा है समय काल में, क्यों पसंद आता है लोगों को समय काल, ये तो कई सीधी सी बात है। कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा करेगा तो वो अपने को पसंद आएगा, ऐसे लोग चेतन भाई मेरी प्रशंसा करते हैं इसलिए मेरे को चेतन भाई पसंद आते हैं। पर सबसे बात ऐसा ही है, आप उनको पसंद नहीं करेंगे जो आपकी बुराई करते हैं, तो ह्यूमन नेचर है। तो समयकार वो ग्रंथ है जो समयकार मेरी प्रशंसा करता है, ज्ञानियों की प्रशंसा करता है, तो ज्ञानियों को समयकार क्यों नहीं पसंद आएगा। हर ज्ञानी व्यक्ति को समयकार पसंद आता है, हर समझदार व्यक्ति को समयकार पसंद आता है। इसके विद्वान उठा करके देख लो, जगत में जो विद्वान हो वास्तव में आत्म स्वरूप को जानने वाले, पहचानने वाले, समझने वाले, आत्म स्वरूप की चर्चा करने वाले, और उन्हें समयकार पसंद नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। पिछले 2000 वर्षों से ये समयकार ग्रंथ तिजोरियों में बंद था, तालों में बंद था, दर्जन की वस्तु था, और सोनगढ़ के ऐसे संत महापुरुष का जन्म हुआ और उन्होंने इसे जन जन की पठन पाठन की विजय वस्तु बना दिया। आज सबके हाथ में समयकार है, सब समयकार का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं। इसके पीछे किसी का योगदान है तो गुरुदेव का योगदान रहता है हमारे को। फिर गुरुदेव के बाद में चलाई उसी धारा को, बाबू भाई है, रामजी भाई है, बाबू जी है, दादा है, गौतम धारी साहब है, सभी लोगों ने मतलब उसी धारा को आगे बढ़ाया और वर्तमान में भी ये धारा चल रही है। बात ये नहीं है कि समय काल का पठन पाठन बहुत होने लगा है, वाले इतना पठन पाठन होने के बावजूद भी समय काल की विषय वस्तु इनकी अनुभूति का विषय नहीं बनी तो क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। हम कह रहे हैं काल बहुत अच्छा आ गया, इतना अच्छा काल आ गया कि आज समय सार जनियन के हाथ में है, इतना अच्छा काल आ गया कि हम समय सार की गाथाओं पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समय सार का मर्म समझ में आया कि नहीं, क्या बात आ गया। कुंद कुंद स्वामी कहना चाहते हैं समय सार की गाथाओं के माध्यम से क्या मर्म सर्व सिद्ध ज्ञान अधिकार की चर्चा कर रहे हैं अपन। नौ अधिकार है समय सार ग्रंथ ने, नौ अधिकारों में अंतिम अधिकार है सर्व सिद्ध ज्ञान अधिकार। पिछले आठ अधिकारों में क्या चर्चा हुई है बताए आपको, डायरेक्ट नौ पर आए तो अंतिम है ना, तो पहले आए अधिकारों में क्या चर्चा हुई है, वहाँ क्या बात बतलाई गई है। वंदित तो शब्द सिद्धे कहकर के आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सिद्धों के वंदन से बात को प्रारंभ किया, सिद्ध स्वभाव के वंदन से बात को प्रारंभ किया। सबसे पहले उसको स्मरण किया जिस अवस्था की प्राप्ति करनी है, सबसे पहले लक्ष्य ख्याल में होना चाहिए, सिद्धत्व हमारा लक्ष्य है। कहते थे पूर्णता के लक्ष्य के बिना शुरुआती नहीं, कहीं शुरुआती वहां से होगी जिसके ज्ञान में वो लक्ष्य ख्याल में हो। आपके ख्याल में होते पहली गाथा हमें हमारा लक्ष्य स्मरण कराती है, सिद्धों को वंदन किया। समय सार समय की चर्चा की दूसरी गाथा में, समय दूसरा नाम स्व समय पर समय की चर्चा की तीसरी गाथा में, शुद्धता की चर्चा की जिसका प्रत्येक वस्तु शुद्ध है स्वभाव से शुद्ध है, समय वो शुद्धता है। चौथी गाथा में जाकर के चर्चा कर दी अनादिकाल से आज तक इस जीव ने काम भोग बंधन की कथा को सुनी है, लेकिन शुद्ध शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा को कभी नहीं सुना। और पांचवी गाथा में कहा कि जो चर्चा तुमने आज तक कभी नहीं सुनी है वो चर्चा सुनाऊंगा, सुनी सुनाई बात सुनाने में क्या दम, जो कहानी आपने सुन रखी है उसको सुनाने में क्या दम, जो खबर आपने सुन ली उस खबर को दोबारा मैं सुनाऊंगी साथ होंगे बड़ी की तो बाकी खबर होगी। आपको पता है मेरे भाई 1500 के नोट बंद हो गए। अरे पंडित जी क्या इंडियन पुरानी बात करते हो, पुरानी बात है कोई नई बात बताओ। तो आचार्य कुंद कुंड स्वामी कहते हैं मैं ऐसी नई बात बताऊंगा जो नई बात तुमने अनादिकाल से आज तक कभी नहीं सुनी है, जो चर्चा में नहीं आई है, जो अनुभव में नहीं आई है, जो प्रकृति में नहीं आई है, मैं वो चर्चा तुम्हारे सामने करने वाला हूँ। मुझे मालूम है सभा में बैठे हुए 99% लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि कौन सी नई बात बताएंगे, सब तो बताया जाने कितनी बार समझदार का स्वाध्याय किया, कितनी बार समझदार पढ़ा, फिर कौन सी नई बात बताने मैं नहीं कुंद कुंड स्वामी कह रहे मैं कोई नई बात बताऊंगा ऐसा दावा करने वाला नहीं हूँ यहाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुंद कुंड स्वामी पाठ की गाथा में प्रतिज्ञा करते हैं कि चर्चा होगी तो ऐसी चर्चा होगी जो कभी नहीं सुनी हो, वो चर्चा करने के लिए यहाँ आऊंगी। ये आवम की चर्चा नहीं परमानंद की चर्चा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जब समय काल ग्रंथ की रचना की उससे पहले आगम ग्रंथ लिखे जाए, करणानुगम के ग्रंथों की रचना हो रही थी, चंद्रगम की रचना हुई, कषाय भावों की रचना हुई, वे ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों का सीधा संबंध भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जोड़ा जाता है, डायरेक्ट जैसे ध्वनि से उनका संबंध जोड़ा जाता है, वो ऐसे ग्रंथ है चंद्रगम ग्रंथ, कषाय भावों ग्रंथ और करणानंद रूप से इसी तरह की ग्रंथों की रचनाएं हो रही थी। मैंने आगम तो आचार्य कुंद कुंड स्वामी ने कहा कि देखो सुनी सुनाई चर्चाएं जो चली आ रही है वो तो बहुत सुनी आपके अनुभव की बात है, जानते हैं आगम और परमागम में क्या अंतर है, आगम किसे कहते हैं परमागम किसे कहते हैं, ये तो आगम किसे कहें और परमागम, आगम आगम जो चला आया है उसका नाम आगम है, जो परंपरा से चला है उसका नाम आगम है। आगम में ऐसी चर्चा होगी जो बात सर्वज्ञ भगवान के अलावा सिद्ध न कर सके वो आगम है, समझ आ रही बात ऐसी चर्चा आगम क्या चीज है, मैंने ऐसी बातें कर्म को हमारी प्रकृतियाँ ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा है इतने भगवान इतनी बंदी स्थिति आप अनुभव की वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति आत्म स्वभाव का अनुभव करे, त्रिकालिक रूप जाए, भगवान आत्मा की अनुभूति करे, तो अनुभूति में पता लगेगा वो स्थान कितने होते हैं? नहीं पता लगेगा। हाथ को हाथ लगे तो आत्मा का अनुभव करे तो पता लगेगा ये संस्थान कितने को अंदर चाल में निहारा। आत्मा का अनुभव थोड़ा सा और क्लियर होगा तो गुणस्थान स्पष्ट दिखेंगे, दिखेगी वो आगम हो। वो सर्वज भगवान की वाणी है। वो भगवान महावीर स्वामी से इंद्रभूति गौतम ने सुनी, इंद्रभूति गौतम के बाद में उनके बाद सुधर्माचार्य ने, उनके बाद जम्बू स्वामी ने, ऐसे तीन अनुबद्ध केवलियों ने, अनुबद्ध केवलियों के बाद में पांच गुप्त केवलियों ने, नहीं नंदी नंदी मित्र विश्व नंदी अपराजित गोवर्धन गोवर्धनाचार्य भद्रबाहू पांचवे गुप्त केवली द्वारजंग से जाता, फिर अंगों से जाता, पूर्व से जाता और परंपरा से चलते हुए सुन सुन करके, लिखा किसी ने नहीं, पढ़ा किसी ने नहीं, तो परंपरा से चलती नहीं बात, जैसा सुना वैसा लिखा, जैसा सुना वैसा याद किया, जैसा याद किया और सुना जैसा ग्रंथों के अंदर लिपिबद्ध कर दिया वैसा बता दिया, वैसा समझा दिया। आचार्य कुंड ने कहा कि आगम की चर्चाएं बहुत होगी, हम आगम के विरोध में लिखने वाले हैं ऐसा नहीं, बात तो आगम की ही है, लेकिन तो आगम की चर्चा में अनुभव को मिला दो तो परमागम हो जाता है। आगम की बात नहीं होगी, आगम तो है ही, समयकार आगम है कि परमागम है? परमागम है, आगम नहीं, आगम तो है, जिनेन्द्र देव की वाणी तो है, चेतन के परमात्माओं की बात तो है, लेकिन इतना होते हुए भी ये समयकार ग्रंथ अनुभूति की बात करता है, ये फीलिंग की बात करता है। पहले अधिकार में यहाँ उन्होंने कई शुद्ध विशुद्ध आत्मा की बात बताऊंगा, तो शुद्ध विशुद्ध आत्मा की बात सुनकर के भी हो सकती है, लेकिन अकेला सुनकर के वो बात नहीं निकल सकती जो बात अनुभव से निकलेगी, जो बात फीलिंग से निकलेगी वो बात सुन सुन करके नहीं हो सकती, छठी भाषा में विषय वस्तु बताना शुरू कर दिया। अभी बता रहे थे कि छठी भाषा का एग्जाम्पल दे रहे थे, आते आते सुन रहा था हफ्ते में, कैसी छठी भाषा के अंदर स्वरूप बदला दिया, जात है तो वही, जो है तो है, बस ये छठी भाषा का विषय न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। सातवीं भाषा में घोर योग के पार बदला दिया, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि में भेद किए व्यवहार से, और ना ज्ञान ना दर्शन ना व्यवहार की बात करी, खत्म कर दिया उसको। आज ही भाषा के अंदर से बात कर ली, अनार्य भाषा के बिना समझा कर देना अनार्य को, फिर उनकी चर्चा कर दी, फिर उसकी गायन भाषा का हवाला दे रहे थे, अभी सारा का सारा व्यवहार अमृत अर्थ है और ग्यारह भाषा के अंदर खत्म कर दिया पूरे संसार को, संक्षेप रुचि वालों के लिए। तो इतना ही समय का, इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जो कुछ होगा सब इसी का विस्तार होगा, जितनी बात ग्यारह की गाथा तक बतलाई है उसी का विस्तार आगे होने वाला है। फिर आगे के अंदर जो आपको स्पष्ट वाली गाथाएं चौदह पंद्रह नंबर आगे सत्रह गाथा के अंदर से क्या क्या की उन्होंने, सबको प्रयोजन भी भगवान आत्मा ध्यान में आ रहा है, आवाज गोपाल सभी को गाथा में अज्ञान की बाई, फिर आगे चल करके बाईस तेईस चौबीस तेईस चौबीस पच्चीस नंबर की गाथा, छब्बीस नंबर की गाथा का व्यवहार की साधना, सत्ताईस नंबर की गाथा में देवी चेतन है ऐसा व्यवहार के निश्चय से अलग अलग है, फिर इकतीस बत्तीस पैंतीस नंबर गाथाओं में निश्चय स्तुति वगैरह की चर्चा की, अड़तीस की गाथा के अंदर पहुँच करके वही शुद्ध आत्मा की चर्चा, कितने उनचास की गाथा में ऐसी गाथा प्रस्तुत कर दी उन्होंने आगे चलकर, जो पांचों परमाणु में जैसे भगवान आत्मा का क्या स्वरूप है। अर समूपम नंदम अवतम जीर्णाम जान अनिंग जैनम जीवम निर्दिष्ट संधानम, पचास से पचपन नंबर तक की गाथाओं के अंदर उनकी बोलों के भिन्न भगवान आत्मा का स्वरूप बतलाया। पहले अंदर का क्या नाम जीवा जीवाधिकार, जीवा जीवाधिकार अड़सठ गाथाएं लिखी, अड़सठ गाथाओं में जीवा जीवाधिकार है। आचार्य कुंड स्वामी ने मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर आत्मा नहीं है, पर युद्ध को कर जाती है पूरा अधिकार खत्म हो गया। पहला अधिकार, पहले अधिकार का मान क्या, आठ अधिकार बनाऊंगा आपको, अस्सी मिनट भी लूंगा, आठ अधिकार की चर्चा करने में पहला अधिकार में क्या बात कही, जीव अजीव नहीं है और अजीव जीव नहीं है। अनादि काल से जीव की सबसे बड़ी मिथ्या मानने का, शरीर को आत्मा मानता है और आत्मा को शरीर मानता है और पूरा का पूरा अधिकार अंत भाषाओं के अंदर छोट मानी है मिथ्या मान्यता के ऊपर। फिर जीव पहचान तू कौन है, तेरा क्या प्रयोग है, पहला अधिकार एकत्व, एकत्व की मान्यता पर छोट मानी, एकत्व और महत्व बुद्धि को छुड़ाया जीवा जीवा अधिकार है। दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार 69 नंबर गाथा से शुरू हुआ, 144 नंबर गाथा तक 76 गाथाएं हैं। कर्ता कर्म की चर्चा हुई, दूसरी मिथ्या मान्यता आप जानी है, सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता कर्तापन, कर्ता भोक्तापन, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानना, ये सबसे बड़ी भूल, महापाप, सबसे बड़ा पहला महापाप पहले अधिकार ने छुड़ाया। जीव की पहली भूल, शरीर को आत्मा मानता है और आत्मा को शरीर मानता है, पहले अधिकार में चर्चा हुई। दूसरे अधिकार में चर्चा हुई कि वो तो पहली मेरे सुनवाई में इसको, फिर कहता हाँ ठीक है शरीर मेरा नहीं है लेकिन मैं शरीर को संभालता तो हूँ, मैं मेंटेन करके तो चलता हूँ, मैं शरीर की वजह से सुख को भोगता हूँ। कर्ता भोक्तापन की मान्यता को छुड़ाया दूसरे अधिकार में, कर्ता कर्म अधिकार नाम दिया। कर्ता कर्म अधिकार ने कर्तापन भी बतलाया आत्मा का और अकर्तापन भी बतलाया। ध्यान देना किसका कर्ता है और किसका अकर्ता है, इस बात को बहुत गहराई से समझाया। कर्ता अकर्ता नहीं, ये आत्मा कर्ता नहीं, यदि कर्ता नहीं होगा तो कर्ता के बिना कर्म कैसे होगा। पहले अध्याय में निश्चय व्यवहार शैली का प्रयोग किया मुख्यता से, निश्चय व्यवहार को समझाया। दूसरे अधिकार ने कर्ता कर्म समझाते हुए पर द्रव्यों के साथ में निमित्त निमित्त के संबंध को समझाया। पहले में निश्चय व्यवहार शैली की चर्चा हुई, दूसरे में निमित्त निमित्त के संबंधों की चर्चा हुई। देख पर के साथ तेरा कर्ता कर्म संबंध नहीं है, पर के साथ में तेरा निमित्त निमित्त संबंध है, ये चर्चा दूसरे अधिकार की चर्चा है। कोई संबंध नहीं तेरा पर द्रव्य के साथ में। आपको जानकर आश्चर्य होगा आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने पूरा कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया और एक जगह पर ऐसा प्रयोग नहीं किया कि भगवान कर्ता होता नहीं, चेतन कर्ता होने से सारी दुनिया भगवान को कर्ता धर्ता मान करके बैठी है। पूरा का पूरा न्याय शास्त्र इसके लिए समर्पित है, ईश्वर कर्ता धर्ता नहीं है। जैन दर्शन की चर्चा यदि कहीं चलती है यूनिवर्सिटियों में जगह जगह बड़े बड़े विद्वानों के बीच में, तो ये कहकर के चलती है जैन दर्शन किसका नाम कि भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, अकर्तावाद का नाम जैन दर्शन है। और कहीं भी चलेगा वहां दूसरे दर्शनों में और जैन दर्शन में अंतर निकालो क्या अंतर है, तो सबसे बड़ा अंतर ये निकलेगा भाई साहब, बहुत से लोगों को मालूम होना भी चाहिए, न्याय शास्त्रों में और यूनिवर्सिटी लेवल पर चंद दर्शनों की चर्चा करने वाले लोगों के बीच में जैनियों को नास्तिक कहा जाता है। जैन के लोग नास्तिक लोग हैं, न्याय के लेवल पर बहुत बड़े लेवल पर जैनी लोग नास्तिक होते हैं। तीन संप्रदाय ऐसे हैं, तीन दर्शन ऐसे हैं दुनिया में जिनको नास्तिक कहा जाता है। जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है, चार बार दर्शन नास्तिक दर्शन है और बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है। चार बार वाले मानते नहीं भगवान, बौद्ध दर्शन में भी ऐसा ही है, हम ना जो नास्तिक हम तो रोज पूजन करते हैं रोज विधान करते हैं हमें जो नास्तिक कहते हैं। जैनी लोग भगवान को कर्ता नहीं मानते, कर्ता नहीं माना तो क्या भगवान को माना, इसका मतलब जैनियों की चर्चा अकर्ता ईश्वर इस रूप में सारे जगत में प्रसिद्ध है केवल जैनियों में हो सकता है। जैनी लोग नहीं जानते हो, जैन तुमने पैदा होने वाले नहीं जानते हो, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल तरीके करके दिखाया था। आप चले जाओ कहीं यूनिवर्सिटी में, मुंबई चले जाना यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ पढ़ाने वाले जो लोग जैन नहीं है, शर्मा है, हिंदू है, ब्राह्मण है, मुसलमान है, उन लोगों से पूछो जैनियों का पहला सिद्धांत क्या था, जैन धर्म किसका नाम है, बोलो। जो जैन नहीं है ना वो कहेंगे भगवान कर्ता धर्ता नहीं मानते जैन लोग, ये जैन का टीका। और अब जरा जैन समाज में लोगों से पूछो तो कहेंगे भगवान करे भगवान। बोलो आनंद क्या है, क्या वो जो जैन नहीं है वो चार वो जानते हैं जैनियों के सिद्धांत क्या है। देख लो अपने घरों में, देख लो अपने परिवारों में, देख लो अपने आस पड़ोस वालों में, देख लो मामा जी चाचा जी बुआ जी नाना जी सर सबको देख लो, सबके घरों में ऐसी हालत है। कौन सा विधान की शांति विधान करा लो शांति होगी, कौन सा समझदान स्वच्छता विधान ले आएगा। हमें तो शांति विधान तो समझ में आता है, कर्म जैन विधान समझ में आता है, सिद्धि चल रहा वो तो विधान हमने सब सुने, उससे शांति मिलती है। नौ ग्रह विधान करा लो करता मानने वाले लोग ऐसा होते हुए भी आचार्य कुंड स्वामी ने कहा कि जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी जैन धर्म को पढ़ता होगा समझता होगा वो इतना तो जानता ही है कि भगवान करता रहता है। समस्या ये नहीं है कि भगवान को अकर्ता सिद्ध करे, समस्या सबसे बड़ी कुंड स्वामी को लग रही थी ईश्वर का कर्ता करेगा निषेध नहीं, उन्हें सबसे बड़ी समस्या ये लग रही थी ये जो छोटे छोटे से ईश्वर बने घूम रहे हैं सारे जगत में, हम जो ईश्वर बने फिर रहे हैं, मैं भगवान हूँ मैं कर्ता करता हूँ उस पर चोट मारी है। एक बाधा भी ईश्वर कर्तृत्व का निषेध करते हुए देश के नहीं की उन्होंने, एक लाइन नहीं ली थी उन्होंने, उन्होंने कहा छोड़ो ईश्वर कर्तृत्व की बात को, जीव ये बात समझने आ गया मैं अकर्ता हूँ, मेरी पढ़ने चलती नहीं है, मेरी पदरते में नहीं चलती है, पर वस्तु में नहीं चलती है, पर पदार्थों के अंदर रंग मात्र मेरा हस्तक्षेप नहीं चलता है, ये बात समझ में आ गई तो फिर भगवान करता धरता मन की बात को छोड़ो भगवान बन जाएगा। फिर भगवान का स्वरूप जानने की जरूरत नहीं है, फिर तो स्वयं भगवान बन जाएगा। अब भगवान बनना है तो भगवान का स्वरूप जानना है, फिर बने बनाए भगवान की बात बता रहे, फिर बने बनाए भगवान को जानना है तो त्रिकाली में जाए भगवान आत्मा की चर्चा यहाँ की है। कर्ता कर्म अधिकार कर्तव्य की समानता के ऊपर जोर मारा, दो अधिकार हो गए, एक तो 44 की गाथा था, एक तो 45 नंबर गाथा से शुरू किया पुण्य पाप अधिकार, तीसरी सबसे बड़ी भूल अज्ञानी की पुण्य पाप को लेकर करते थे समाज में लोगों के बीच में, जब समाज में उसे देखते थे जब लोगों से चर्चा करते थे वे इस बात का अनुभव करते थे कि ये लोग क्या हो गया इन लोगों को, पुण्य और पाप इन चर्चाओं में उलझे हैं ये लोग, ये पुण्य भवन बन के बैठ गया है, पुण्य पाप अधिकार पूरा अधिकार लिखा, मेरे को पुण्य और पाप के ऊपर निबंध लिखना है, निबंध लिखना है पुण्य पाप के ऊपर, पुण्य क्या होता है पाप क्या होता है, पुण्य प्रकृति है कौन कौन सी है, पाप प्रकृति है कौन कौन सी होती है, तो काम मिलेगा प्रेमी ने पुण्य पाप अधिकार मिलेगा क्यों मिलेगा, पुण्य और पाप की चर्चा नहीं मिलेगी उसमें, पुण्य से क्या क्या मिलता है पाप से क्या मिलता है, पुण्य से क्या होता है पाप से क्या होता है, पुण्य का क्या स्वरूप है पाप का क्या स्वरूप है, पुण्य प्रकृतियाँ कौन सी है पाप प्रकृतियाँ कौन सी है, पुण्य के हित करे कुछ नहीं है तो बोले पुण्य पाप अधिकार और ये कुछ नहीं है ये क्या करे, पुण्य पाप अधिकार पूरा लिखा और पुण्य पाप को भी समझाया उन्होंने, पुण्य और पाप को समझाना आचार्य कुंड का उद्देश्य नहीं है, आचार्य कुंड का उद्देश्य पूरे अधिकार में एक ही पॉइंट है पुण्य और पाप को समान बताना, बस हमें ये नहीं समझाना है पुण्य क्या होता है पाप क्या होता है, हमें तो ये कहना है दोनों एक है, ये समझ लो आप, देखो पुण्य पाप कर्तव्यों की चर्चा करें वो आगम क्या, और पुण्य और पाप दोनों को त्रिकाली जो भगवान आत्मा की अनुभूति में एक समान फीलिंग आए वो परमागम, आगम होगा तो प्रकृतियों की चर्चा होगी, अब प्रकृतियों की चर्चा नहीं है ये तो अनुभव की बात है, फिर चालीस दिनों जाए भगवान का अनुभव करते हैं, अब अनुभूति से बाहर आते हैं तो चाहे पुण्य परिणाम हो चाहे पाप परिणाम हो दोनों में ही आप उसका बेचैनी दिखाई देती है, बोले हमारे लिए दोनों एक समान है, क्या अच्छे मुझे भेद करना पुण्य और पाप में भेद करें, क्या भेज रहे हैं बताओ? चोर और डाकू ने भी ऐसे भेज दिए जा सकते हैं? ऐसे बुरे बनिए, ये डाकू तो बहुत अच्छे हैं पर ये डाकू बुरे, ये चोर तो है ना लेकिन अच्छे चोर है और ये बुरे चोर है, ऐसे भेज होते चोरों ने अच्छे बुरे से भेज नहीं होते, डाकुओं ने अच्छे बुरे से भेज नहीं होते। अच्छा हिंसा में अच्छी हिंसा और बुरी हिंसा इस तरह से ये बात समझा रहे हैं यहाँ, पुण्य और पाप के अंदर भेद मत करो। देखो जब आगम लिखे जा रहे थे सर्वत्र जैसे ग्रंथ वहां पाप तत्व बदलाए, पाप तत्व की चर्चा की, पुण्य पाप को हाईलाइट नहीं किया, वहां गर्भित कर दिया। इन्होंने क्यों अलग से पुण्य पाप का विचार लिखा? पाप तत्व की चर्चा इन्होंने भी की है, दो अलग से निकाले इन्होंने, स्वतंत्र अधिकार लिखा उसके लिए। वो जानते थे पुण्य पाप के संदर्भ में बहुत घोटाला चल रहा है, सारी दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला पुण्य पाप के संदर्भ में है। और क्या घोटाला चल रहा है कि वो जो पाप था ना उस पाप के एक साथी ने अपना भेद बदल लिया, पाप के साथी ने और नाम बदल लिया और लोगों को दबा दिया। तो क्या करना? उसकी पोल खोलना कि आचार्य गुरु मिलने का काम, गलत नहीं में बताना, धोखे में बताना, ये जो तुम्हारे को दिखाई दे रहा है ये मुझे ऐसा ही है, ये सारी चर्चा हुई किसने? पुण्य पाप अधिकार में खत्म हो गया। पुण्य पाप अधिकार, पुण्य पाप अधिकार का सार क्या है? पुण्य और पाप दोनों का बात बात है, एक बात को समझ में आ गया तो पुण्य पाप अधिकार समझ आगे चले तीन अधिकार में कोई दिक्कत तो नहीं तीन अधिकार तक आप पढ़ करके देख लेना, इसके अलावा कोई बात नहीं है आपको। आगे बढ़ो, चौथा अधिकार आश्रव अधिकार, आश्रव अधिकार में तो आश्रम के बताओ भेदों की चर्चा होगी, रोकी नहीं है कम से कम बांधे, ये अधिकारों के नाम तो रखी और चर्चा होती है ही नहीं। आश्रव अधिकार में आश्रम की चर्चा नहीं है, आश्रव अधिकार में चर्चा करते हैं कि ज्ञानी को आश्रम नहीं मिलता। आश्रव अधिकार का मूल प्रतिपाद्य क्या है? आश्रव अधिकार का मर्म क्या है? ज्ञानी को आश्रव नहीं होता ये समझाना चाहते हैं, बस पूरा अधिकार उठा करके देख लो। भोगों के बीच में रहते हुए भी, संयोगों के बीच में रहते हुए भी ज्ञानी जीव निराश्रव है, इस बात को सिद्ध किया है सारी बातों को। और ये बात अनुभव की बात है, प्रकृति की चर्चा परमात्मा की चर्चा है और अनुभव से निकली हुई बात परमात्मा की चर्चा है। पूरा आश्रव अधिकार में बढ़ गया इसके अंदर, किसान ऐसा कैसे हो सकता है ज्ञानी को आश्रव नहीं हो? जिन ज्ञानी को आश्रव नहीं होगा जिन ज्ञानी का अंग परमात्मा होंगे, फिर भगवान को नहीं होगा आश्रव? नहीं भाई साहब, भोग भोगते हुए भी ज्ञानी को आश्रव नहीं है तो कौन से ज्ञानी की बात है? जो ज्ञानी भोग भोग रहा है सब वो लोग कौन होंगे? अरंत भगवान, सिद्ध भगवान, मुनिराज। अब कौन ज्ञानी आएगा इसमें जो भोग भोगते हुए भी निराशा है? मुनिराज तो आएंगे नहीं इसके अंदर, मुनिराज की चर्चा तो हो ही नहीं सकती है इसमें, क्योंकि मुनिराज तो भोग ही नहीं है भाई साहब भोगों को। जो ज्ञानी होकर के भी भोगों को भोग रहा है वो व्यक्ति निराश्रम है। ऐसा कैसे हो सकता है? कर्म तो बनते ही है, ये बात तो प्रचंडता की बात हो जाएगी। नहीं नहीं भाई साहब घबराना मत, सुनो कर्म कैसे बनते हैं करेंगे नहीं तो नवीन कर्म बांधने में कौन समझते हैं? नए कर्म कैसे बनते हैं? कौन से कर्म से? ज्ञानवर्णी से, रत्नवर्णी से, कौन से थे? नवीन कर्म बनने का एकमात्र कारण था शास्त्रों में मोहन जी, सूर्यवर्जी भोगकुमार प्रकाश दूसरा अध्याय। नवीन कर्म बंधन का कारण आठ कर्मों में से एक मोहनी कर्म को निमित्त बनता है, बराबर। अब मोहनी के अलावा बाकी सात तो है नहीं, उनको तो हटा दो। अब मोहनी के दो है, एक दर्शन मोहनी और एक चालीस मोहनी। तो बोले दर्शन मोहनी से कितना आश्रम होता है और चालीस मोहनी से कितना आश्रम होता है ये बताओ? तो भाई चालीस मोहनी से होने वाला आश्रम तो अनंत भाव है, कुछ नहीं है। असली बंधन तो दर्शन मोहनी से ही है, असली आश्रम तो मिथ्यात्म का आश्रम है। अगर ज्ञानी से विख्यात रहेंगे तो अज्ञानी का आश्रय कैसे होगा? बोले दर्शन मोहनी वाला तो होगा नहीं, ज्ञानवाणी से होता नहीं है, धर्मवाणी निमित्त बनता नहीं है, अंतराय निमित्त बनता नहीं है, देखने आयु नाम गोत्र निमित्त है नहीं, मोहनी निमित्त बनता है, मोहनी में दर्शन मोहनी निमित्त बनता है वो उसको है नहीं, और चारित्र मोहनी के माध्यम से होने वाला आश्रम बोले वो कुछ है नहीं, तो ज्ञानी का आश्रय नहीं है। ज्ञानी जीव के आश्रम नहीं है ये सिद्ध कर दिया। आश्रम अधिकार में बंद अधिकार लो आगे बंद अधिकार में से चर्चा की उन्होंने बनता है बंद अधिकार में चर्चा की बंद का मूल कारण क्या है, किससे बनता है? अर्थवान बंद का कारण है, राधा जी बंद का कारण है, नित्यात्म सहित रागा जी बंधन का मूल कारण है, ये चर्चा की है। नित्यात्म अविरत प्रमाण कचा योग इन कारणों के नामोल्लेख तो किए, इनकी चर्चा तो की, नाम तो लिखा है उन्होंने, लेकिन नाम गिनाते हुए ही उनके कितने प्रकार के नित्यात्म, कितने प्रकार की अविरति, कितने प्रकार का प्रमाद, कितने प्रकार की लगाए और योग, कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने तो कहा देखो भैया ये बातें तुम्हें जाननी हो तो आगम से जान लेना, मैं तो आगम लिख रहा हूँ, मैं वो बातें नहीं कहूंगा जो बातें सुन सुन करके चली आ रही है, तो परमागम है, सुन करके चली आई हुई बात आगम, आगम की परिभाषा ही आपके वचन में आगम है, आगम की व्याख्या है आपके वचन को आगम देते हैं, आप कौन? सर्वज्ञ परमात्मा, तो सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को आगम है, ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं परमागम, तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी की जरूरत नहीं लिखोगे? नहीं नहीं, हम जो बात लिख रहे हैं तो सर्वज्ञ की है, लेकिन सर्वज्ञ की बात जिसे सुन करके कहो तो उतनी बात उतनी मजेदार वाली नहीं निकलती, लेकिन जब उसको फील करके लिखते हैं तो बात ही कुछ और होती है। आप किसी बात को सुन करके कहो तो आपकी बात में उतना भजन नहीं पड़ेगा, जब आप उस बात को अनुभव करके बोलोगे तो उस बात का भजन ही कुछ और होगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की बात में भजन क्यों है? क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी अनुभव करके बात करते हैं, तो और आचार्य ने अनुभूति नहीं होती होगी, सर्वसाधारणता नहीं होगा और आचार्य ने जिन्होंने लिखा है था तो सही, लेकिन उन्होंने अनुभव की बात लिखी नहीं, उन्होंने आगम की बात लिखी, समझ आई बात? अनुभव करने त्रिकाली ध्रुव का, और जो शास्त्र लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं जो सुन करके चली आई ये बात वो, इसलिए वो गुणस्थान की चर्चा हो गई, उसने मार्गना स्थानों की चर्चा हो गई, कर्मकांड की चर्चा हो गई, कर्म नकलियों की चर्चा हो गई, बंद स्थिति की चर्चा हो गई, बंद की चर्चा और बंद स्थिति आदि की चर्चा दूसरे ग्रंथों में हमें साल में नहीं, बंद अधिकार होगा और आगे चलो बंद अधिकार के बाद बंद से पहले कम्बल, आश्रम के बाद कम्बल, कम्बल के बाद निर्जरा और उसके बाद में बंद, संबर अधिकार को गजर ही कर दिया, संबर अधिकार को मैं पढ़ता हूँ, सबसे छोटा अधिकार है पूरे समय काल में, समय काल की चार सौ पंद्रह गाथाएं, चार सौ पंद्रह गाथाएं नौ अध्यायों में, नौ अध्याय है ना, नौ अध्यायों में एक अध्याय है संबर अध्याय, संबर अधिकार, तो नौ में से एक है तो पचास पचास गाथाएं होंगी सब अधिकारों में, संबर अधिकार में मात्र बारह गाथाएं, सिर्फ बारह गाथाएं, चार सौ पंद्रह में से सिर्फ बारह गाथाएं संबर अधिकार में, भाई साहब सही कर रहे हैं और पूरे समय काल का मरम भर लिया है, बारह गाथाओं समय काल का मरम नहीं, जिनागम का मरम भर लिया, जैन जागरण का मरम भर लिया, द्वादश जंग का काल बदला दिया और बारह गाथाओं में, देव विज्ञान की चर्चा की, अमृत चंद्राचार्य की टीका भी इतनी उत्कृष्ट आई है, ज्ञान के प्रदेश राज के प्रदेश भिन्न भिन्न ऐसे अपूर्व बात निकल करके आई है, एक सौ इक्यासी नंबर की गाथा से शुरू हुआ एक सौ बानवे नंबर गाथा तक, एक सौ इक्यासी से एक सौ बानवे नंबर गाथा तक संबर अधिकार, फिर विज्ञान की चर्चा, ये जैन बात है, ये जैन धर्म है, बोलो आप जानते हैं जैन धर्म कितना नाम है, जैन धर्म किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति पूछ ले आप जैन हो, जैन किसे कहते हैं? मेरे पास हो जाएगा, मैं लौट रहा था नवीन भाई वहां से अमेरिका से, अकेला था, सफर लंबा था, मैं सोचा किसी से चर्चा करें बगल वाले से, क्या बात करें, तो आपने बात यही से शुरू होती है कि आप कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ उनकी बात की थी, कुछ अपनी बात करें, आप अपने छोटे अपने धर्म के अलावा तो इधर उधर की राजनीति से अपने को क्या लेना देना, क्या आपको हिलेरी पसंद है, हिलेरी ट्रंप पसंद है, अब उससे हमें क्या लेना देना। तो आपने चर्चा क्या किया आप, तो जैसे हमने उनसे पूछा है, उन्होंने हमारे से पूछा है, आप क्या मानते हैं, कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, हमसे जैन है, जैन धर्म को मानते हैं, आपको जानते आश्चर्य होगा सामने से प्रश्न आया कि जैन कौन से हैं, जैन जैन ग्रंथ जैन क्या होते हैं, अब क्या बताऊंगे। तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक हुआ है, मेरे साथ महावीर भगवान पानी भगवान का नाम तो सुना ही होगा, हम सब महावीर भगवान के फॉलोअर्स हैं, महावीर भगवान को फॉलो करते हैं, तुम भी महावीर अब न इसको जैन पता है न महावीर भगवान को जानता है, और जो महावीर भगवान को नहीं जानता वो आदिनाथ को पार्श्वनाथ को क्या जानता होगा, और उसको क्या बता रहा हूँ, अब क्या क्या चल रही है, वो मेरे से पूछने लगा कौन होते हैं, जैन कैसे होते हैं, उसको बताओ जैनियों के बारे में, तो मैंने कहा इसको क्या बताऊंगा जैनियों के बारे में, मैंने जो बताया वो तो बताऊंगा ही आपको, आप यदि मेरी जगह होते तो क्या बताते अपने मन में सोचना, आप क्या बताते जैन कौन होते, आलू प्याज नहीं खाते, रात्रि को नहीं खाते, जैनियों का आचरण बहुत शुद्ध पात्रिक होता है, जैन लोग बहुत ईमानदार होते हैं, जैन लोग अहिंसक होते हैं, अहिंसा को नॉन वायलेंस को मानते हैं लोग, क्या लगता है भाई साहब, जैन धर्म वो धर्म है दुनिया के धर्मों में जो धर्म ये कहता है कि स्वयं भगवान हो का भगवान बन सकते, जैन धर्म धर्म का नाम है जो धर्म अकर्तावाद की चर्चा करता है, जैन धर्म वो धर्म है जो धर्म वेद विज्ञान की बात करता है, वेद विज्ञान अकर्तावाद कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कर्ता बात कोई किसी गलती नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई शरीर का कर्ता धर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, फिर कमाने के पैसा नहीं कमाया जाता, ये समझाया गया नहीं, फिर विकल्पों के पैसा नहीं आता, दिन रात एक करें और पैसा नहीं कमाया जाए, और दिन रात एक करके पैसा इकट्ठा करें और सब भूल हो जाए, पैतालीस वर्षों तक धूल 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 कैसे रहे, अब समझ में आए धूल लोग कैसे, एक दिन में खत्म हो गया तब, अरे जो आपकी संपत्ति है वो खत्म हो नहीं सकती, और जो खत्म हो जाए वो आपकी हो नहीं सकती, अपनी संपत्ति से परिचय करा रहे, एक गुंडमंड स्वामी ने प्रतिज्ञा की पांचवी गाथा के अंदर, वही तो प्रतिज्ञा की है, तुम्हारा वैभव तुम्हारे को दिखाऊंगा, तुम कौन सी संपत्ति को अपना मान के लेते, वो संपत्ति की चर्चा खुलकर के आइए नंबर अधिकार में, वो जैन धर्म है, अपना कहीं से अपने से करा दे उसका नाम जैन धर्म, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है ये बात बताए उसका नाम जैन धर्म, तेरी चलती नहीं है पर उसका नाम जैन धर्म, समझो तो सही, जैन कुल में पैदा हुए हैं हम, हमें पता ही नहीं है हम जैन ही हुए, नाम जा के जैन लगा दिया, क्यों क्योंकि पिताजी जैन लगाते थे, क्यों क्योंकि वो जैन लगाते थे, हमारे लिए पूरा प्रसंग टोरंटो में जाकर के आए, नॉर्मल वहाँ पूछ लिया है जैन कौन होते हैं, उनको लगा कि जैन कौन होते हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, गए थे राजीव गांधी के पास में गए थे, तो देखो क्या स्थिति है, हम जिस कुल में पैदा हुए हमें पता होना चाहिए कि हम जैन कौन है, जैन कौन होते हैं, जैनियों का क्या स्वरूप होता है, वेद विज्ञान क्या है, अकर्तावाद क्या है, ये चर्चाएं संभव अधिकार है, सारे गाथाओं का अधिकार वेद विज्ञान से सिद्ध सिद्ध होने का मार्ग है, सिद्ध होने की विधि है, हर जैसे होने का मार्ग बतला दिया है, संभव अधिकार में चर्चा आ रही है, पूरी नजर अधिकार है, बातें कहते वो घोघरा और नजर आ गई, अरे आश्रव अधिकार के अंदर तो फिर थोड़ी लिमिट में बात की थी, आश्रव अधिकार के अंदर कहा था भोगों के बीच में, कईयों के बीच में रहता है, परिवार के बीच में रहता है, फिर ये आश्रम नहीं हो रहा, तब तक तो मान लिया, अब ये करें भोग भोग रहा है आश्रम तो हो नहीं रहा और करें निर्जरा हो निर्जरा हो रही है, कैसे माने भोग भोगते हुए निर्जरा हो रही है। ये मूल प्रतिपाद है निर्जरा अधिकार का। ज्ञान वंत के भोग निर्जरा रीति है, अज्ञानी को वही कर्म फल देते हैं, बंद कराने वाला है अज्ञानी जीव को बंद कराने वाला और ज्ञानियों के लिए वो भोग निर्जरा करा देने वाले, ज्ञानियों के लिए निर्जरा परिग्रह मेरा नहीं। फिर निर्जरा अधिकार के अंदर कुछ समय बाद में कुछ भावनाओं के बाद में परिग्रह मेरा नहीं ये चर्चा उभर करके सामने आ गई। और फिर निर्जरा अधिकार समापन करते करते वो भावनाएं आ गई जिसमें सब रहते रहने की चर्चा कर दी, लेकिन आज अंगों की चर्चा कर दी। आज अंगों की चर्चा समय की चर्चा की समय का लोगों को बताता हूँ तो लोग कहते हैं समय का नहीं समय से आज हम लोग की चर्चा कौन से लोग आश्चर्य करते हैं जो समय का निर्वाह करते हैं। और टीका के अंदर कलशों में जहाँ निशंकित अंग की चर्चा की वहाँ निशंका निर्भया ऐसा कहकर के सप्त भयों के रहित की चर्चा कर दी समय चंद्र स्वामी ने, और छह कलशों के माध्यम से सात भयों के रहित अंग की चर्चा की निर्जरा अधिकार समाप्त हो गया। फिर बंद अधिकार आ गया, निर्जरा अधिकार भी बड़ा जबरदस्त है, बहुत मार्गी मार्गी चर्चाएं की, ऐसी अद्भुत चर्चाएं की है और सरल है बहुत। मैं कहता हूँ समय काल से सरल दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है, सबसे सरल ग्रंथ है, इतना सरल है चर्चा करने में भी सरल, पढ़ने में भी सरल, समझने में भी सरल। टीका की बात नहीं करता हूँ, हो सकता है टीका आपको समझने की थोड़ी सी बुद्धि चाहिए, हमने चंद्रा क्या की टीका को समझने के लिए थोड़ा ऐसा लगता है थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, कहीं जागरण की चर्चा की है न्याय भरा है उन्होंने तो फिर थोड़ा सा उपयोग की सूक्ष्म चाहिए। और आचार्य कुंड कुंड की गाथाओं में साफ साफ लिखते परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनू, अरे परिग्रह मेरा होता नहीं क्योंकि मैं अजीव बनता नहीं, धीरे 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 बात ये मेरा नहीं है इसलिए मेरे को तकलीफ नहीं है। फिर जाए या मिल जाए कोई अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाओ चला चाहे जहाँ पर परिग्रह मेरा नहीं अतमी का ही है तकलीफ किसको बतलाओ किसको कितनी तकलीफ है जैसा लोग करोड़ का टेस्ट चला गया उससे ज्यादा तकलीफ किसको है जैसा 25,000 करोड़ चला गया उससे ज्यादा तकलीफ किसको है जैसे बोले से बोले भरे से ट्रक के ट्रक भर लो इतनी संपत्ति जिनके पास में ऐसे लगन बेकरों में नीचे जिसमें लगन के थे सिवा रखे थे उसमें ज्यादा तकलीफ है। अच्छा ये भी समझ लो आप किसी मिनिस्टर का करोड़ों रुपया चला गया तो आपको कितनी तकलीफ है, आपको कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल नहीं तकलीफ, क्या बात है आपको तकलीफ नहीं इतना पैसा चला गया उसका तो उसका आएगा मतलब प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है, प्रॉब्लम वहाँ खड़ी होती है जहाँ मेरा जाता है, मुझे नहीं मालूम किसका है आपका है ये चला जाएगी मतलब आपको तकलीफ नहीं, ये चला जाएगा आपको तकलीफ नहीं, और आपका जाता तो देखो ये चला जाए तो आपको तकलीफ क्यों नहीं होनी है मेरा ही नहीं तो तकलीफ किसको है, जिसने ये समझा ये मेरा है वहाँ तकलीफ नहीं। और आचार्य कुंड कुंड स्वामी दाताओं में ये समझा रहे हैं ये तेरा नहीं है तो तकलीफ क्यों नहीं, बोलो कितना सरल मार्ग है ये सुखी होने की कितनी सुंदर विधि बता दी है। जब तक तू बल पदार्थों को अपना मानता रहेगा तब तक बल पदार्थों के संयोग योग के चक्कर में दुखी होता रहेगा, और ये जगत के बल पदार्थ तेरे है नहीं इसलिए तुझे दुखी होने का कोई काम नहीं, काहे को टेंशन लेगा और क्या है ही बराबर। ये चर्चा है निर्जराधिकार में, ये पढ़ी रहे थे इसकी चर्चा निर्जराधिकार में खोल खोल करके की है। आप पढ़ना है तो सिर्फ दो दो पांच पांच पंक्तियों में आपको रहस्य बता रहा हूँ। अधिकार के इन अधिकारों में चर्चा क्या की गई है, क्या है निर्जरा, निर्जरा का क्या स्वरूप है, फिर बंद अधिकार की बात उसके बाद मैंने बताई अभी आपको। बंद के हित प्रवेशों की चर्चा नहीं की, बंद के मूल कारण की तरफ ध्यान आकर्षित कर दिया। अपनी बंद का कारण ये है, डरे मत तो शाम को भोजन के लिए हलवा बनाओ तो खाते हुए डरना मत, खीर बनी हो तो डरना मत, जो बनाओ घर को खाना क्या और खाते उसकी तारीफ भी करना। बंधे के कर्म से चिंता भरकर इससे नहीं बनता, बंधन का कारण ये नहीं है, बंधन का कारण खाना नहीं है, बंधन का कारण पीना नहीं है, बंधन का कारण उठना बैठना नहीं है, बंधन का कारण कोई चर्चा वार्ता ही नहीं है, बंधन का कारण क्या है, मूल कारण बंधन का मिथ्या है, चर्चा बंधन का है। और मान्य काफी छोट मारी खत्म हो गया बंधन का, बस इतनी चर्चा बंधन का है। अब आ जाओ अंतिम अधिकार, अंतिम मतलब अपनी चर्चा के पहले का अंतिम मोक्ष अधिकार। क्या चर्चा आई मोक्ष अधिकार में, मोक्ष अधिकार ने कहा कि मोक्ष की चर्चा करने से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष अधिकार लिखा उन्होंने, अरे मोक्ष की चर्चा करने से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, बंधन की चर्चा करने से बंधन से मुक्त नहीं होता, तो कैसे बंधन से मुक्त होता है, प्रज्ञा जनी की चर्चा कर दी उन्होंने। प्रज्ञा जनी बंधन और चेतन इन दोनों को पृथक पृथक जानने से बंधन से मुक्ति की प्राप्ति होती है। बंधा तो है नहीं, क्योंकि बंधन से मुक्ति नहीं कर रही है तुझे, पिता मैं बंधाऊ कैसे मुक्त होगा, अरे तू बंधा ही नहीं है, बंध जुदाए और चेतन जुदाए, मैं न्यारा और बंध न्यारा, जैसे ही हमने ज्ञान के माध्यम से जान लिया बोले हो गया मोह खत्म, बात ये मोक्ष अधिकार की चर्चा होगी। वहां मोक्ष अधिकार की अंतिम गाथाएं बहुत प्रसिद्ध गाथाएं हैं, 306 और 307 नंबर की गाथा प्रतिक्रमण आदि की चर्चा है। जिस कुंड ले जाए समाज में चर्चा के विषय बने रहते हैं, जिस कैसी गाथाएं लिखी है, प्रतिक्रमण आदि को विश्व कुंड कह दिया और अप्रतिक्रमण को अमृत कुंड कह दिया, कैसे कैसी बात कह रहे, उलट उलट बात होने की नहीं बात हमारे को, हमें प्रतिक्रमण गर्म लगता है, हमें प्रतिक्रमण अच्छी चीज है, प्रतिक्रमण का निषेध कर रहे हैं, वहाँ शुभ भाव का निषेध है, प्रतिक्रमण विकल्पात्मक गज्जा का निषेध है, उसका निषेध किया। ये मर्म बदला है, जहाँ प्रतिक्रमण को ही कुंड कह दिया गया हो वहाँ अप्रतिक्रमण का अर्थ प्रतिक्रमण छोड़कर अप्रतिक्रमण पर भगवान आत्मा में लीन होने को अमृत कुंभ कहा है, उसको मुक्ति का कारण दे दिया, वो असली मोक्ष से मोक्ष अधिकार संपन्न हो गया। तो यहाँ तक मोक्ष हो गया, अब क्या बात रह गई, मोक्ष हो गया, अब कौन सी बात बाकी रहेगी, ये बताओ, अब सब हो गया ना, संसार दशा से शुरू किया था, अनादि अज्ञान की से शुरू किया था और मोक्ष अधिकार में आकर गया, मोक्ष हो गया, अब मोक्ष हो गया तो मोक्ष के बाद में भी है क्या, तो अब खत्म हो गया 308 गाथाओं तक, समय साल खत्म हो गया क्यों, समय साल तो खत्म हो गया, सुनो तो सही, लेकिन जितनी एक बार आपने पूरी बात पढ़ी है उसको रिवाइज करना जरूरी है, क्या नहीं तो आगे बाद में पीछे समाज हमें पता है सबकी हालत, अभी पूछ लो यहाँ से उठने के बाद में पूछना पिछले आठ अधिकारों ने क्या क्या बदलाया, पैसा समाज ले लेगा, हमें तो पहले ही पता है, अरे समाज नहीं होगा तो अगले साल आगे करेंगे क्या, फिर वही बताएंगे क्या, देखो तो क्या किया कुंडकुंड स्वामी ने, जानते हैं बराबर इस बात को, तो कुंडकुंड स्वामी ने जो असरतावाद जो मूल मुद्दा था जो किसी ने गाथाओं में प्रारंभ से शुरू किया था, जिसके ऊपर चोट मारते आ रहे थे अज्ञानियों की मान्यता के ऊपर चोट मारते आ रहे थे, अनादिकालीन जो हमारी भूल चली आ रही है उस भूल के ऊपर चोट मारते आ रहे थे, ये जो चर्चाएं सब चल रही थी, अब सर्वनिष्ठ ज्ञान अधिकार में उस त्रिकारी जाए भगवान आत्मा को मुख्य रखकर तो जय भगवान आत्मा को मुख्य करते हुए उसी अकर्ता वाक्य के ऊपर चोट मार दी। बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल है, सबसे बड़ा अधिकार है परमेश्वर ज्ञान अधिकार। 308 से लेकर के 311 तक की ये गाथाएं अवैध भाषा में चलाई होगी, उनके कोर्स में शामिल था, 320 के आगे का कोर्स है मेरा, तो चर्चा चली होगी पिछले 4 दिनों में। 308 से 311 तक की गाथाओं की टीका में अंत में अंतिम शब्दों में आचार्य अमरचंद्र स्वामी ने लिखा, अर्थ जीवो अकर्ता अवशेष। 311 नंबर 308 से 11 तक की जो टीका है, अंतिम शब्द है टीका से अमरचंद्राचार्य की, अर्थ जीवो अकर्ता अवशेष। इस प्रकार यह जीव अकर्ता सिद्ध होता है। ये वो गाथाएं हैं जिन गाथाओं में से गुरुदेव सिंह ने क्रमशः निकाल दिया। वही होगी चर्चा, मैं कुछ चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि पिछले 3-4 दिन में चर्चा हुई है इन सब गाथाओं के बारे में। ये सब चर्चाएं चलते हुए अकर्ता बहुत अकर्ता बहुत अकर्ता वाक्य की चर्चा 320 नंबर की गाथा तक पहुँच गए, और 320 नंबर की गाथा के पश्चात स्पेशल प्रकरण हुआ शुद्ध पारायण भाव, अशुद्ध पारायण भाव से भिन्न उसकी चर्चा करते हुए जय देना चाहने की टीका में उसकी चर्चा भी हुई होगी। अपनी चर्चा अब जो आगे बढ़नी है उन गाथाओं में भी बहुत सरल सरल बात करेंगे, उनमें मुझे कठिन बातें आती नहीं है, अपनी सरल सरल बात करने वाले अब जिनको सरलता से समझना हो, सरल सरल बातें समझनी हो, वो कहते हैं थोड़ा समझ के जल्दी आना, ठीक है ना। और जिनको सूक्ष्मता से समझना हो तो हम भी आते सुनेंगे सूक्ष्मता से, लेकिन समझना एक ही बात को है, जय भगवान आत्मा का जो स्वरूप है वो मूल समझने का विषय है, और वो किस तरह से ये जय भगवान आत्मा अकर्ता है, उनकी प्राप्ति किस तरह की हो सकती है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूँ, मैं स्वयं परमात्मा कैसे बन सकता हूँ, यह समय साल समय माने वस्तु, समय माने द्रव्य, समय माने आत्मा, समय माने आत्मा भी कैसे किया गया, और समय माने आत्मा का हो तो सार कैसे की क्रिया, द्रव्य कर्म भाव कर्म और लौ कर्म से रहित आत्मा वो समय काल है। ऐसा जो समय काल है वो समय काल 415 गाथाओं में आचार्य कुंड कुंड स्वामी ने दिखाया है, हम देखने की कोशिश करेंगे, और जब देखेंगे तो गाथाओं में नहीं दिखेगा वो अपने ज्ञान में दिखेगा, हमारे ज्ञान के माध्यम से हमारा समय काल बनू जाए दिखे, अनुभूति का विषय बने, और अनुभव करके जो परमागम की रचना हुई है ऐसा परमागम आत्मसात करके हम सभी को पहली गाथा का विषय जिसने सिद्धों को नमस्कार किया था ऐसी अवस्था हो जाए, अपने आप को नमस्कार हो जाए और अपन भी सिद्धों में जाकर के शामिल हो जाए, किसी भावना के बात करना चाहिए।
Thank you.